हरि ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। आज का दिवस ऐसे भी शुभ है, चतुर्थी है, और हमारे बीच में धर्मानंद जी महाराज जो स्वाध्याय के माध्यम से हमें पूरे महीने तक हमारे बीच में रहते हैं। बहुत ही सुंदर उपनिषद जो आज सुनाने जा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी मणिरत्न मालिका, यह हमें प्राप्त होगी 31 तारीख तक। पूज्य महाराज जी द्वारा एक प्रातः प्रवचन है और साथ ही साथ स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी पर भी पूज्य महाराज जी की पुण्यवाणी हमें प्राप्त हो रही है। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम।
चम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामि प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोज्जः सहौजो मयि प्राणापानो जन्मेच्छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनिषो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामे देवाः भद्रं पश्ये मा छभिर्यजेत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तेनोभिर्व्यसे मदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे परमाद्वैतविज्ञानं कृपया यो ददाति वै सोऽयं गुरु गुरु साक्षात् शिव एव न संशयः शिव एव न संशयः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, प्रेम पुरी महाराज जी की जय। स्वनाम धन्य परम पूज्य प्रातस्मणीय खंडानंद जी महाराज की। आइए जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान कृत प्रश्नोत्तरी मणिरत्न माला का हम लोग नित्य सत्संग में विचार करेंगे। भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा है कि मुंबई, जिसको लोग कहते हैं मोहमयी नगरी, इस मुंबई में स्वनाम धन्य जो हिमालय अनादिकाल से तपस्वियों की तपस्या, ज्ञानियों की ज्ञान भूमि रही, उसी भूमि से स्वनाम धन्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज पधारे और मुंबई में ऐसा सत्संग का कल्पतरु लगाया, उसी कल्पतरु को पल्लवित करते रहे स्वनाम धन्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय खंडानंद जी महाराज। फिर उसी कालक्रम से बड़े बड़े संत महात्मा आप लोगों के समक्ष उस कल्पतरु का दिव्य जो अद्वैतामृत है, श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा कर रही, क्योंकि मनुष्य जीवन की सफलता स्वस्वरूप के ज्ञान में है। स्वस्वरूप का ज्ञान कैसे हो, इसलिए यहां पर नित्य प्रति सत्संग स्वाध्याय की धारा अक्षुण गंगा प्रवाहवत प्रचलित है। यह बड़ा भारी भाग्य है, सौभाग्य है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि जीवन में तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयम एवै तत् देवानुग्रह हेतुकम्, मनुष्यत्वम मोक्षोत्वम महापुरुष संश्रय। तीन चीज बहुत ही दुर्लभ है। धनपति होना दुर्लभ नहीं, ये तो प्रारब्ध का फल है, पुण्य का फल है, परंतु मनुष्यत्व की उपलब्धि होना, इसके बाद मोक्षा होना, और तीसरी चीज है महापुरुषों का छत्र छाया। भगवान की कृपा से हम लोगों को मनुष्यत्व भी प्राप्त है। मनुष्यत्व का अर्थ होता है मत्वा कर्माणि सिव्यन्ति इति मनुष्यत्वम्। यह परिभाषा वेद के भाष्यकार यास्काचार्य जी ने निरुक्त में किया है कि मनुष्य किसे कहते हैं। मत्वा कर्माणि सिव्यन्ति मनुष्य, शास्त्र से आचार्य के मुखारबिंद से निष्काम कर्म, सत्कर्म, उपासना, भक्ति, इन सबको ठीक ठीक समझकर जो अपने जीवन में उतारते हैं उनका नाम मनुष्य है। तो मनुष्यत्व भी प्राप्त है हम लोगों को, मोक्षा भी है कि संसार सागर से हमारा छुटकारा हो, और तीसरी चीज तो बहुत बड़ी कृपा है जिसको कहते हैं महापुरुषों की छत्र छाया। वह बड़े बड़े महापुरुषों की छत्र छाया हम लोग को उपलब्ध है, तो हमारा जीवन धन्य है। अब हम लोग विचार करते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी छोटा सा ग्रंथ है और बड़ा ही सुंदर है। इसको आचार्य ने मणि रत्न माला संज्ञा दिया है। ये मणियों की कैसी है, रत्नों की मणि है, हजारों रत्नों में मणि के समान चमकने वाली ये छोटी सी जरा सी पुस्तिका है। इस पुस्तक में एक जिज्ञासु प्रश्न करता है। प्रश्न क्यों करता, क्योंकि मनु महाराज का यह वचन है, ना पृष्टम कसचित बुर्यात, बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। जानन नपि मेधावी जड़वत लोकम समाते। बिना पूछे बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये बकबक करता है, इसका दिमाग खराब हो गया है, जैसा घरों में बच्चे निरादर करते ना। तो पहले ही मनु महाराज ने बता दिया, भाई ना पृष्ठम कश्चित ब्रुयात, किसी को कुछ मत बताओ। जानन नपि, और कोई कहो कि अन्याय से पूछे, परीक्षा के लिए या समय पास के लिए या मजाक के लिए, तब भी नहीं बताना। अन्याय नच्च पृच्छतः, अन्याय से पूछे तब भी नहीं बोलना। फिर क्या करना चाहिए, तो कहा कि जानन नपि मेधावी, जानता हुआ भी जड़वत लोकम समाचरेत, मानो मुझे कुछ आता है नहीं, इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले एक जिज्ञासु जिज्ञासा करता। हमारे प्रत्येक शास्त्र में आप देखो विचार करके, तो प्रश्नोत्तर से ही प्रारंभ होता है। उपनिषद में मैत्रेयी को गार्गी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैत्रेयी बहुत दिन हो गया संसार में रहते रहते, अब मेरा मन संसार से उपरत हो चुका, उपरत मतलब उब गया है, संसार में मैं रहना नहीं चाहता। तो मैं सोचता हूं कि मेरे जाने के बाद कहीं तुम्हारा अपनी जो प्रिय हमारी पत्नी दूसरी कात्यायनी है उसके साथ कहीं राग द्वेष न हो जाए, खटपट न हो जाए, इसलिए ते अनया अंतम करवाणी, अंत बोलते बंटवारा, मैं कात्यायनी के साथ तुम्हारा बंटवारा करके जा रहा हूं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का तकलीफ न हो। इतना सुनते ही मैत्रेय ने कहा, भगवन, अपनी वैदिक भाषा है, किसी को भी आप भगवान कह सकते हैं। उसने भगवान, आप जिस धन को मुझे देकर जाएंगे या उस धन से मुझे परम शांति अमृत आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तो बहुत ही प्रियवादिन है, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। साफ याज्ञवल्क्य ने दो वाक्यों में कह दिया, यथा उपकरणवताम जीवितम स्यात् तथैवते जीवितम स्यात्। जिस प्रकार से धनाढ्य व्यक्ति का जीवन संसार में होता है वैसे तुम्हारा होगा। अमितत्व से तू न आशास्ति, आशा भी नहीं करना। इस धन दौलत से, सामाजिक पदार्थ से अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, कभी आशा नहीं करना। आप लोगों ने महाराज जी के प्रवचन में सुना होगा, मैंने भी श्रवण किया कि आप आराम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हजार काम को छोड़कर खुद लगना पड़ता है। आप सोचो कि हमारा नौकर चाकर पुत्र मित्र बंधु बांधव को 10,000 दे दो, बोलो भाई हमारे बदले तुम स्नान कर लेना, भोजन कर लेना, आराम कर लेना, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता। तो नौकर के, मित्र के या बंधु बांधव की आराम करने से, भोजन करने से आपका पेट नहीं भरेगा, आराम नहीं होगा, होगा संभव नहीं। सारा कारोबार छोड़कर आप भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, आराम करते हैं, ऐसे ही अमृत की प्राप्ति स्वसाध्य है। स्व मतलब खुद आपको इसमें लगना पड़ता है। यही बात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अमृतत्व की आशा भी नहीं करना, धनाढ्य के समान तुम्हारा केवल जीवन होगा। धनाढ्य के समान मतलब राग द्वेष से युक्त। भाई जिसको आप धन देंगे खुश, और जिस दिन नहीं देना बंद कर देंगे बुरा ही करेगा। जब तक दे रहे खुश तो क्या हुआ, प्रारंभ में राग, देना बंद किया तो द्वेष। एक बार कैलाश में बहुत दूध होने लगा, कम से कम समझो एक क्विंटल। तो विचार हुआ कि भाई इतने दूध का उपयोग कैसा हो, तो सबने कहा कि ऐसा सबको दूध पिलाओ, जितने नौकर चाकर 25-30 नौकर थे सबको पिलाओ। पर मैंने कहा बिल्कुल नहीं पिलाओ। मैंने कहा क्यों, लोगों ने पूछा क्यों, हमने कहा आज तो एक क्विंटल हो रहा पर गर्मी के दिन में सर्दी में 70 लीटर होगा, जब दूध नहीं देंगे तो क्या बोलेंगे, देखो पहले दूध मिलता था दूध नहीं दे रहे, दूध को बेच रहे, ऐसा वैसा 100 आरोप लगाएंगे, फिर नाराज हो जाएंगे, क्रोध करेंगे। इसलिए ऐसा करो इस दूध का दही बनाओ, रोज खीर बनाओ, पनीर बना के खिलाओ सबको, उनको तो मिलेगा खाले सबको। यदि आज आपने दूध देना शुरू कर दिया और 4 महीने बाद तो उतना दूध होना नहीं है, जो वही 70 में आ जाएगा, उस समय बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बड़े महाराज ने मान लियो, हाँ ये ठीक बात है। तो व्यवहार में आप जब तक दान मान सम्मान धन दे रहे तब तक तो खुश, नहीं दिया तो नाराज, तो राग द्वेष के समान तुम्हारा जीवन होगा। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी को समझाया। कहा मैत्रेयी तू पहले भी प्रिय बात नहीं थी, अब भी बहुत ही प्रिय बात पूछ रही है। उस मैत्रेयी को उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, अंत में कहा आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। एक आत्मा ही सत्य है, ये पूरा संसार अपनी कामना के लिए ही आपको आदर सम्मान प्रेम कर रहा, प्रत्येक प्राणी अपनी ही अनुकूलता के लिए पति पत्नी से प्रेम कर रहा, पत्नी पति से प्रेम कर रही, बेटा बाप से जो प्रेम कर रहा ना अपनी अनुकूलता के लिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सर्वप्रथम जिज्ञासा किया, उसी जिज्ञासा का बड़े विस्तार से उत्तर दिया कि देखो भाई अतो अन्यत आर्तम, अंत में कहा आर्त बोलते दुख, संसार का अंतिम परिणति है आर्त मतलब दुख, उपरामता जिसको आप कहते धोखा, संसार अंत में धोखा जरूर देगा। सबसे बड़ा संसार हमारा मनी राम है, ये शरीर है, शरीर की चाहे कितनी सेवा कर ले, बढ़िया से बढ़िया इसे भोजन कराएं, गरम से गरम चाय पिलाएं, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनाएं, एक दिन शरीर राम आपको धोखा देता है कि जाओ तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, अधिक से अधिक शमशान तक की तो जाएगा ना, आगे नहीं जाने वाला। व्यवहारिक जगत में बोलो भाई हमने तुम्हारी बहुत सेवा की, अब ऐसा है अब जीवन का अंतिम पड़ाव है, इस पड़ाव में प्रेम पूरी चलो और सत्संग सुनो, भजन करो, चिंतन करो, ध्यान लगाओ। तो शरीर राम तो बाद में, मनी राम सबसे पहले जवाब देगा। इतना प्यारा जो हमारा मन, आप कहते हैं कि मैं मन का राजा, राजा नहीं गुलाम है, जैसा मन कहता वैसा हम करते। जब हमारा मन इंद्रियां बुद्धि शरीर भी हमारा साथ नहीं दे सकता तो संसार के प्राणी भला साथ कहां दे सकते, संभव है ही नहीं। इसलिए कहा कि विवेकी वही है जो महापुरुषों की आश्रय लेकर आत्मक कल्याण में लग जाए, क्योंकि आत्मक कल्याण से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। संसार की सारी चीज एक दिन छिन जाएगी। इसलिए ब्रह्म सूत्रकार ने कहा कि भाई कालो ही जगत भक्षक, ये काल कैसा है, जगत का भक्षक, ये पूरा संसार एक दिन काल के का ग्रास बन जाता है। इस काल के ग्रास को छुटाने वाले अकाल महाकाल भगवान शंकर जो आपका साक्षात स्वरूप है, जिसको कहते हैं आप कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम आत्मा इति मन्यन्ते, मांडुक उपनिषद के सातवें मंत्र में है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम आत्मा इति मन्यन्ते, आत्मा का स्वरूप बताया। तो जीवन में आत्म उपलब्धि से बड़ी कोई चीज नहीं है। यहां पर वही जिज्ञासा कर रहे हैं, अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतो मे शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। एक संसारी व्यक्ति आचार्य शंकर के पास आता है और प्रार्थना करता है, प्रभु हम संसारी आदमी हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं वेद वेदांत का चिंतन करूं, विचार करूं, यज्ञ याग करूं, मैं अपना कल्याण चाहता हूं, इस संसार सागर से मेरा उद्धार कैसे हो, यह मुझे आप रास्ता बतलाइए। इस संसार कैसा, अपार संसार समुद्र मध्य, समुद्र का दृष्टांत दिया, जैसे समुद्र में अनेक प्रकार की तरंगे लहरें चलती हैं, बड़े बड़े वहां पर ग्राह होते हैं, मगरमच्छ आदि, ऐसे संसार रूपी समुद्र में कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। उपनिषद में तो स्पष्ट कर दिया, अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, आठ ग्रह तो हमारे सामने है। ग्रह कौन, इंद्रियों को वहां पर ग्रह कहा, आंख नाक कान त्वचा, ये मन हस्त पाद, ये ग्रह के समान। जिस प्रकार से जल में मगरमच्छ ग्राह आपके पैर को पकड़कर जल के भीतर खींचता है, ऐसे हमारी आंखें बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक आंख को रूप की तरफ खींच के ले जाती है। ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये हमारा आंख भी एक तरह से ग्रही है, ऐसे आपका कान है, सुनते सुनते हम बहरे हो गए, मशीन लगाना पड़ रहा, पर सत्संग की बात तो कम, दुनिया की बात कुछ सुनाने लग जाए ना तो रास्ते में रुक जाएंगे, हाँ सुनाओ इसके बाद क्या हुआ, आगे किसने क्या किया। ये जो कान है, इस कान को एक ग्रह पकड़ रखा, इसलिए आप अब विषय की चर्चा खूब सुनने में लगे रहते। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भाई स्रोत भी ग्रह के समान है। इसके बाद कहा कि जीव भी ग्रह है। हम लोग बढ़िया से बढ़िया भोजन करते करते अब डायबिटीज हो गया, खाया नहीं जाता, हजम नहीं होता, फिर भी जीव कहते मिष्ठान लाओ, डॉक्टर तो मना करे पर जीव मानते नहीं। इसी का नाम है ग्रह। जीव रूपी ग्रह स्वाद रूपी समुद्र में हमें खिंचकर डुबो रहे, ऐसे ही आपका त्वगिंद्रिय है, स्पर्श करते करते थक गए पर भी स्पर्श की तरफ इंद्रियां भाग रही है, ऐसे पैर है, हाथ है, सारी एक ग्रह के समान है। सबसे खतरनाक ग्रह मन है, मन को बताया मन। ये मन कैसा ग्रह कि मन की एक इच्छा पूरी करो, सौ इच्छा खड़ी हो जाती है। तो मन को कहा कि सबसे बड़ा ग्रह ये मन है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो संसार में ये ऐसे ग्रह हैं, आंख नाक कान त्वचा हस्तपाद और मन, जैसे कि समुद्र में ग्रह आदमी को खींचकर जल के भीतर डुबो देता है। ऐसे रूप रस गंध स्पर्श में इंद्रिया हमें ले जाकर बिल्कुल भुला देती हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। वही जिज्ञासा कर रहा शिष्य, अपार संसार समुद्र मध्य, इस संसार के सागर का कोई पार है ही नहीं। आप चाहे लाख प्रयास करो, प्रत्येक आदमी चाहता है कि अपने संसार को मैं पूरा कर दूं। प्रयास करते हैं भागवत में याति का नाम आपने खूब सुना होगा, अपनी आयु से इसके बाद अपने पुत्र के हजार वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया, फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी हो नहीं पाई। तो अनुभव सुनाया कि हे मनुष्यों सावधान हो जाओ, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोगों को भोग नहीं पाए, ये भोग ही हमें भोग कर जीर्ण शीर्ण बना दिए, हमारे तृष्णा शांत नहीं हुई बल्कि हम भी जर्जरित हो गए। तो नारायण सावधान कर दिया कि संसार अपार संसार, इसका पार नहीं पा सकते। हम चाहते हैं कि विषयों के संग्रह से, संसाधन के संग्रह से इस संसार सागर से पार हो जाएगी, यही हमारी मिथ्या भ्रांति है। भ्रांति बोलते अतस्मिन तद्बुद्धि, अतस्मिन तद्बुद्धि का नाम भ्रांति है। सामने रस्सी पर हमने सांप मान लिया, रस्सी को रस्सी रूप से समझ ले तो भय नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही संसार को संसार रूप से समझ ले तो संसार कैसा होता है, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्मैव इदम सर्वम, आत्मैव इदम सर्वम, ऐसा अनुभव होगा। क्योंकि संसार का अधिष्ठान एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही है, पर यह जो अधिष्ठान का विवेक कहां पर होगा, जैसे कि जब तक रोशनी नहीं आती तब तक हम रस्सी को सांप समझते। रोशनी चाहे कैसी भी हो, ट्यूब लाइट की हो, टॉर्च की हो, सूर्य की हो, चंद्रमा की हो, या वाणी की, वाक भी ज्योति है, जैसी भी ज्योति आ जाए समझदार आदमी कहता देख ये जो है ना सांप ही रस्सी है, इसको बोलते वाग ज्योति। ज्योति की आगे ही भ्रांति मिट जाती है और आप परम आनंद का अनुभव करते, शांत हो जाते हैं। जो आप रस्सी को सांप समझकर भयभीत हो रहे थे, कंपित हो रहे थे, पसीना पसीना हो रहे, चीख मार रहे थे, सब दूर हो जाता। ऐसे हमारे जीवन में एक ज्योति ज्ञान होना चाहिए, पर वह दो दिव्य ज्योति जिसको बोलते दिव्य दृष्टि, शास्त्र दृष्टि, वह कहां मिलेगा, सत्संग में। ये हमारी भ्रांति है कि सत्संग से जो है ना एक घर द्वार का काम कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा, लोग सोचते हैं ना कि भाई सत्संग सुनेंगे तो अपना व्यापार व्यवसाय कारोबार ठंडा पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं। सत्संगात सर्वम लभ्यते, संसार से सब कुछ मिलता है। ब्रह्म सूत्र में एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई आम को खाने के लिए आम का पौधा लगाता है, परंतु आम पौधा लगाने के बाद फल भी मिलता, छाया मिलती है, पत्ते मिलते, पुष्प मिलते, लकड़ियां मिलती है, सब कुछ मिल जाता। ऐसे ही सत्संग से सब कुछ मिल जाता। एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके चार लड़के, चारों में सबसे छोटा बड़ा ही प्यारा था सेठ जी का। वह पिताजी के साथ नित्य प्रति सत्संग जाता, मंदिर में जाता, देवाचन करता। अंतिम समय सबको बुलाया सेठ जी ने, कहा देखो भाई तीनों तो सब पठित हो, समझदार हो, सबने कारोबार संभाल लिया, सबसे प्यारा जो पुत्र मेरा छोटा है अभी ना समझ है, इसका ख्याल रखना, इससे हर तरह से सहयोग करना। पिताजी का शरीर शांत हो गया। कालक्रम से सेठ का छोटा पुत्र भी बड़ा हो गया। भाइयों ने कहा कि देख भाई, हमने पिताजी की आज्ञा मानकर तुझे अब तक कुछ नहीं कहा, तेरी उम्र 25 वर्ष की हो गई, अब तो कम से कम थोड़ा हाथ बटा, कुछ न दुकान में जाकर बैठ जाया कर। उस बच्चे ने कहा बड़े भाई से कि मैं भी तो काम करता हूं। भाइयों ने कहा कि तेरे इस काम से घर बार चलने वाला नहीं। उसने कहा कि सुबह जल्दी उठ जाता हूं, स्नान करता, मंदिर में जाता, देवाचन करता हूं, गौ को ग्रास खिलाता, फिर सत्संग सुनता हूं, माला घुमाता हूं, फिर जो है रामायण का पाठ, गीता पाठ करते, ये भी तो काम है। भाइयों ने समझाया कि देखो भाई, अब तुम बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे, इससे घर गृहस्थी कारोबार चलने वाला नहीं। घंटा दो घंटा हमारे साथ चलो, फैक्ट्री में बैठो, नहीं तो दुकान में बैठो, कुछ तो करो। उसने कहा कि देखो जी, हमारा मन तो उधर लगता ही नहीं, बस हमको तो सत्संग मंदिर दो ही चीज अच्छा लगता है। लोगों ने कहा ना कैसा शादी कर दो, अपने आप घरवाली इसको की कान पकड़ के समझा देगी। शादी कर दिया। शादी होने के बाद वही काम करता रहा। लोगों ने कहा अभी नई नई बहू है, साल भर के बाद अपने आप बहू रानी इसको समझाने लगेगी। साल, दो साल, चार साल बीत गया, फिर भी वह तो सत्संग भजन ध्यान में ही लगा रहा। भाइयों ने कहा कि भाई पहले तू अकेले था, अब घरवाली तेरी हो गई, दो हो गए और एक पुत्र भी हो गया, अब तो कुछ कारोबार कर इनके लिए, अपने बेटे के लिए, पत्नी के लिए। छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब, ये मेरा कारोबार भी आपसे कोई छोटा मोटा नहीं, आप उठते 8 बजे, मैं उठता 4 बजे, मैं भी तो करता ही हूं। भाइयों ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, बंटवारा कर दिया। चारों भाइयों ने चार हिस्सा लगाकर बंटवारा कर दिया। फिर भी छोटा पुत्र अपने सत्संग में, भजन में जरा भी प्रमाद नहीं किया। मां ने सोचा कि जब यहां रहेगा तो हमेशा कुछ न कुछ तकरार होती रहेगी, कहा बेटा ऐसा है तू बाहर चला जा, कुछ वहां धंधा करना। मां ने छोटे पुत्र को 25,000 रुपए दिए, जाओ तुम विदेश में कुछ कारोबार करो। मां की आज्ञा मानकर सेठ का छोटा पुत्र चल पड़ा। रास्ते में उसके गांव कुछ आदमी मिले जो व्यापार के लिए जा रहे थे, उनके साथ चल पड़ा। समुद्र पार करना था, सब नाव में बैठे, नाव में बैठकर एक टापू के पास गए। नाव का मैनेजर ने कहा देखो भाई, 2 घंटे तक नाव यही रहेगी, आप लोग तब तक मंदिर दर्शन कराओ, सत्संग सुनाओ, इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे। सारे यात्री अपना मंदिर घूमने लगे, सत्संग आदि का लाभ लेने लगे। सेठ का छोटा पुत्र भी उनके साथ मंदिर में गया, सत्संग में गया, सत्संग सुनने लगा। 2 घंटे के बाद सबने कहा भाई चल, अब 2 घंटे हो गए, अब नाव चलने को तैयार होगी। उसने कहा जाओ, मुझे तो यही मजा आ रहा, मैं तो सत्संग सुनूंगा, देखा जाएगा। अरे तू यहां आया था कारोबार करने, ये सत्संग कोई कारोबार थोड़ा है। बोला कि भाई साहब ये भी बड़ा भारी कारोबार करके तो देखो। सबने कहा इसका दिमाग खराब, सब साथ वाले चले गए। दुनिया तो क्या सोचती है, उसके हां में हां करो तो बहुत अच्छे, और आपने उसकी हां नहीं भरी तो कहते बेकार, कोई काम का नहीं, इसका मगज खराब। सारे साथी उसका साथ छोड़कर चले गए। सत्संग के बाद वहां जो महान जी थे उनसे मिला, सारी बात बताई, कहे कोई बात नहीं रहो यहां, भजन ध्यान चिंतन करो, रहने लगा। एक महीने के बाद महान जी ने पूछा बताओ तुम्हारे पास कुछ पैसे कौड़ी है या नहीं। उसने कहा महाराज जी मां ने 25,000 दिए थे, वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो लाओ मुझे पैसे को ले लिया महंत जी ने। उस पैसे से दो बढ़िया देसी गाय मंगाई और कहा तुम इसकी सेवा करो बढ़िया से, गौ माता की बड़ा पुण्य मिलता है। एक महीने तक सेठ के पुत्र ने गौ माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता रहा। एक दिन महंत जी बुलाए, बोले भाई बताओ तुम दूध का क्या करते हो। बोला महाराज दूध को मैं रुद्राभिषेक में खर्च कर देता, संतों को पिला देता हूं और कुछ करता नहीं। बोले ऐसा नहीं, कल से ऐसा करो थोड़ा दूध तुम समुद्र किनारे जो टेकड़ी है वहां ले जाकर एक घड़े में रख दिया करो। बोला जो आज्ञा। दूसरे दिन से 5 किलो दूध महाराज की आज्ञा से समुद्र के पास जो टेकड़ी था उस पर रख दिया करता। इस प्रकार से 15 दिन तक करता रहा। 15वें दिन महात्मा ने पूछा बताओ तुम्हें कुछ मिलता है कि नहीं। बोला महाराज 3 दिन तो कुछ भी नहीं मिला, अब जो है दो दो मणियां मिलती है। उस दूध को हंस हंसनी पिया करते थे। हंसनी ने कहा भाई हम लोग बड़े प्रेम से स्वादिष्ट दूध का पान करते हैं, बदले में कुछ देना चाहिए, तो दो दो मणि हर दिन घड़े में डाला करते। महात्मा ने कहा कि भाई उस मणि का तुम क्या करते हो। बोला महाराज सब ऐसे रखे हुए हैं। बोला नहीं ऐसा नहीं रखो, ऐसा करो जो तुम गोबर की थापड़ी बनाते कंडा, उपला इसको बोलते हिंदी उपला, उपले में दो दो मणि डाल दिया करो और पहचान के लिए भगवान का नाम लिख दो राम, ऐसा लिख देना ताकि पहचान हो। ऐसा करने लगा, साल भर में सैकड़ों मणियां हो गई। साल भर के बाद उसके साथी व्यापार करके लौटे, सबने वहीं पर विश्राम किया। याद आ गया भाई यहीं पर हमारे नगर के सेठ का लड़का था, या चल के मिलके आते हैं। जब आए मंदिर में दर्शन के मिले, साथियों ने कहा चल हम इतना माल कमा के लाए हैं, किसी ने कहा 10 लाख, किसी ने कहा 25 लाख, किसी ने कहा इतना हमें सामान लाया, तू क्या कमाया। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो भजन करता हूं, गौ माता की सेवा करता हूं। सभी ने कहा तेरी इच्छा तो चल हमारे साथ, जरा परे मूलक को देश को होकर आते हैं। अच्छी बात है, मैं महाराज से पूछ के आता हूं। गया, प्रार्थना किया, महाराज श्री ये हमारे साथी कह रहे कि चलो जरा तुम्हें अपने घर छोड़ देते हैं और मां का दर्शन करके आना। महात्मा ने कहा अच्छी बात है, जाओ मां का दर्शन कर लेना, पर साथ में इन उपलों को लेकर जाओ। अब उसने सारे कंडे उपले बांध लिए। सबने कहा तेरा दिमाग खराब है, अपने यहां बहुत उपले कंडे मिलते हैं। बोलते नहीं, ये गौ माता का प्रसाद है, इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा। बोले ठीक है भाई। सारे उपले साथ लेकर चल दिया। जैसे नगर के पास पहुंचे सब तो हंसी मजाक कर रहे कि इसकी बुद्धि बस गोबर गोबर हो गई, इसके दिमाग में गौ सेवा करते करते गोबर भर गया। बताओ ये लेके आ रहा इसमें क्या दम है। उसने कहा कि देखो मित्रों, जाओ हमारे घर और हमारी मां को बोल देना कि एक कमरा खाली करके रखे और बहुत सारा गौ माता का प्रसाद उपला लेकर मैं आ रहा हूं। सबने कहा भाई मैं बोल दूंगा। साथी लोग आए बोले तुम्हारा बेटा आ रहा, वह गाय के गोबर का कंडा उपला बना के ला रहे, कमरा बढ़िया से खाली कर दो। मां ने विचार किया कि अभी तो वर्षा का समय नहीं, ठंडी का दिन, कहीं भी उपला रह सकता। इतने में आ गया, मां को नमस्कार किया, बोला मां कमरा खाली किया। बोले बेटा उपला तो कहीं भी डाल दो, कौन उठाता है, कौन पूछता है। बोला नहीं, पहले कमरा खाली कर उसमें मैं रखूंगा। मां ने कहा भाई अब जिद कर रहा बेटा है, बहुत दिन के बाद आया है, एक कमरे में सारा उपला रखवा दिया। साथी लोग आए, साथियों ने कहा चलो राजा से मिलकर आते हैं। ना चलो भाई, इसने दो उपले अच्छे रेशमी वस्त्र बांध कर लाया और साथ ले लिया, क्योंकि नियम है जब भी जाओ भगवान के पास, मंदिर में, ब्राह्मण के पास, गौ माता के पास, राजा के पास, रिक्त हस्तम न पश्येत, खाली हाथ नहीं, कुछ नहीं तो फूल ले लो, पत्र ले लो। यह भी उपला दो लेकर गया। सबने अपना अपना भेंट दिया, राजा को समझदार होने लगी। इसके उपला को जब खोला राजा ने तो कहा क्या लाया। राजा बुद्धिमान था, उस कंडे को एक बाल्टी पानी में डाल दिया। सोचा कोई ना कोई बात होगी, ऐसे तो हमारे पास हिला नहीं सकता, बड़ा सत्संगी है, बुद्धिमान है बालक। धीरे धीरे वह कंडा जब गल गया तो चार मणियां चमकने लगी, एक कंडे में दो मणियां थी। बाल्टी में देखा, समझ गया भला बुद्धिमान है। पूछे राजा बताओ क्या सेवा करे। बोले महाराज ये हमारे मित्र रास्ते मुझसे सबने दस दस उपले लिए थे, इनसे कहता हूं वापस करो। तो बोले आज नहीं कल, कल नहीं परसों कर देंगे। बस यही मेरी प्रार्थना है, ऐसे उपले ये हमारे वापस करें। राजा ने कहा देखो भाई, इसके एक उपले में दो मणियां और दस उपले में कितने हो गए, बीस, सब प्रदान करो। सबने कहा महाराज ऐसी उपले कहां मिलेंगे जिसमें दो दो मणियां हो। राजा ने कहा यदि वापस नहीं कर सकते तो तुम्हें कारागृह में डाल दूंगा। राजपुत्र और सेठ पुत्र ने कहा महाराज सबने मुझसे दस मांगा है, लिखा भी सबका नाम, इतना लिया, सबने वादा किया घर चलकर दे देंगे। सबने का उपले तो बहुत है पर ऐसे उपले कहां मिलेंगे। राजा ने कहा देखो या तो उपले वापस करो या दंड भोगने को तैयार। सब बोले महाराज अब आप आज्ञा करो क्या करें। पूछा कि बताओ इन्हें क्या दंड दें। सेठ के बेटे ने कहा कि दंड एक ही इनको मिलना चाहिए कि हमारी तरह इनको भी आप सन्मार्ग में लगाओ, ये हमारे सत्संग का, दिवाचन का बड़ा उपहास करते थे। यहां तक बोलते थे कि गाय की सेवा करके इसके दिमाग में गोबर भर गया, देखो गोबर कुपला लेकर आ रहा, इतनी समझ नहीं। सबने कान पकड़ा, बोला महाराज हमें आपका दंड स्वीकार है। उस सेठ पुत्र ने कहा कि महाराज हमने सत्संग से सब कुछ प्राप्त कर लिया, उन सारे अपने साथियों को भी सत्संग में लगा दिया। सबने विचार किया कि भाई जिसको हम कहते थे कि बिल्कुल भोला भाला कुछ भी नहीं जानता है, यह सत्संग से सब कुछ प्राप्त कर लिया, यह लोक भी और परलोक भी। देखो सत्संग से सब कुछ मिलता है। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है उसके पास 1 लाख रुपया भी होगा, 1000 भी होगा, 50-100 भी होगा। ऐसे यदि आपके जीवन में सत्संग आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। क्योंकि तो भगवान की प्रतिज्ञा है, अनन्या चिंतियंतो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्य भियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि आप अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान के दृढ़ प्रतिज्ञा है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि न मे भक्त प्रणश्यति, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। दुनिया कोई विश्वविद्यालय या कंपनी फैक्ट्री सरकार कभी नहीं कर सकती। जैसा कि श्याम सुंदर ने प्रतिज्ञा किया कि न मे भक्त प्रणश्यति, हमारे भगत का नाश कभी भी नहीं होता है। तो जीवन में सत्संग आ जाए तो सत्संग के रोशनी में आप धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। देखो मैत्रेय भी गृहस्थाश्रम में है, अर्जुन कौन आश्रम है, सन्यासश्रम है, गृहस्थाश्रम में है, और भगवान श्री कृष्ण महागृहस्थ। अर्जुन ने गीता ज्ञान कहां श्रवण किया पता आपको, कुरुक्षेत्र में। और माहौल कितना बढ़िया था, यहां तो बहुत बढ़िया, हम आराम से बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कला नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई संभावना भी नहीं किसी प्रकार की कि विघ्न आएगा। पर वहां पर न जाने कब कहां से एटम बम परमाणु बम की वर्षा हो जाए। ऐसे समय अर्जुन ने जिज्ञासा किया। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन का लंबे समय तक साथ रहा, लंबे समय तक, परंतु अर्जुन ने कभी जिज्ञासा किया ही नहीं, कभी सवाल किया ही नहीं। तो भगवान कभी बिल्कुल कभी भी उत्तर नहीं दिया, न बताया कि अर्जुन तो ऐसा कर ऐसा ना कर। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अभी तक अर्जुन भगवान को बुआ का बेटा मानता था, बुआ का बेटा बोलते ना वो क्या बोलते, पिता जी की जो बहन की ब्याह होता उसका लड़का, हाँ, तो बुआ का पुत्र मानता था, बुआ का पुत्र। परंतु आज उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। अर्जुन ने अपना बहुत दिल दिमाग लगाकर थक गया, देखा है कोई रास्ता नहीं। तब अर्जुन ने कहा कि अब मैं आपके शरण हूं, प्रपन्न मतलब शरणागत हूं, शिष्य हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो वही आप उपदेश करें। अर्जुन ने अपना निर्णय क्या सुनाया था, जैसे आप अपने बेटे को नाती को पोते को बहू को समझाते ना बैठा कर, भाई ऐसा करना चाहिए, अपनी ऐसी परंपरा है, ऐसा अपना जो है ना सिद्धांत है, कुल परंपरा, तो आपको अपना निर्णय सुनाते हैं। क्या कहते हैं, पुरानी बात है, पुराने जमाने की चीज है, बोलते कि नहीं, नया जमाना आ गया। वही बात अर्जुन ने कहा कि प्रभु युद्ध होगा तो यहां पर खून की नदियां बहेंगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बड़ा भारी जो है ना हिंसा होगा, इतना नहीं बल शंकर दोष आ जाएगा, सारे कारीगर वैज्ञानिक महावैज्ञानिक मारे जाएंगे, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने अपना निर्णय सुना दिया था, पर भगवान ने क्या सुनाया, अशोच्यानन्म शोचस्तम प्रज्ञावादाच भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन के बुद्धिवाद पर प्रहार किया, जो अर्जुन के मन में था ना बुद्धिवाद, में बड़ा भारी बुद्धिमान हूं, उस पर प्रहार किया कि पंडित लोग ऐसी नहीं सोचा करते हैं। और अंत में भगवान ने कहा, मां सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वासुर पापेभ्यो मुक्ति सय मां सुचः शोक मत करो। कि जीवात्मा शोक सागर में डूब रहा है, भगवान की संगति होने के बावजूद भी अर्जुन ने कभी जिज्ञासा नहीं किया, न कभी प्रश्न किया, न सवाल किया, भगवान ने कुछ भी नहीं बताया। पर आज जब अर्जुन ने जिज्ञासा किया, वो भी कहां पर, महाभारत के बीचों बीच, युद्ध में कोई भरोसा नहीं, कौन जिएगा कौन मरेगा, किसकी हार किसकी जीत, अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि भाई वास्तव में सत्य क्या है। तब भगवान ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान का अर्थ अनात्म धर्म, धर्म दो एक होता परमार्थ धर्म एक अनात्म धर्म। अनात्म धर्म बोलते संसार का धर्म, संसार धर्म मतलब कि आप जो संसार के व्यवहार में उलझे रहते कि मैं पति हूं मेरा एक कर्तव्य है, मैं पत्नी मेरा यह कर्तव्य, वह तो करना है छोड़ना नहीं, परंतु कैसे करना, भगवत प्रीत्यर्थ। जो आप हाल मास चाम के पुतले को खुश करने के लिए कर रहे ना, वहां पर आप अधिष्ठान चेतन को देखना कि हाल मास चाम का पुतला है जो हमारा बेटा है बेटी है बहू है, उसके अंदर जो बैठी हुई आत्म ज्योति है अधिष्ठान चेतन, उसको प्रीति के लिए हमें कर्म करना है। अर्जुन ने पूरा ज्ञान श्रवण किया और सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया है। अर्जुन भागा नहीं, जंगल नहीं गया, न माला घुमाया, न समाधि लगाया। अर्जुन को आत्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद देखो, स्वयं अर्जुन ने गीता में बताया है, गीता में ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब, मेरा मोह भंग हो गया, आपकी बात मैं मानूंगा, आज्ञा पालन करूंगा। मोह भंग हो गया, आत्मज्ञान हो गया था। तो आत्मज्ञान होने पर भी अर्जुन ने लोक धर्म का युद्ध महाभारत संग्राम किया, पर पहले सब में अंतर आ गया। पहले करता था अपने लिए, स्वजन के लिए, जय विजय के लिए, और अब किया किसके लिए, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मतलब कि निष्काम भाव से युद्ध किया अर्जुन ने। अब निष्काम भाव से युद्ध किया कि सब कुछ परमात्मा कर रहा, मैं तो निमित्त हूं, सिर्फ मुझे परमात्मा निमित्त बनाकर स्वयं ही परमात्मा कर रहा। उपनिषद का मंत्र आपको याद होगा, ये सेव साधु कारयति यम उन्निनिषते, ये सेव साधु कारयति यम अधो निनिषते। इस मतलब कि आपको जो हृदय में बैठी हुई आत्म ज्योति परमात्मा है, कोई अच्छा काम कराता है, जब आपको उठाना चाहता है, वही जो है ना बुरा काम करवाना, जब आपको गिराना चाहता है, तो सब कुछ तो परमात्मा ही करता है। अज्ञान सम्मान लेते कि मैं कर रहा हूं, अहम करोमेति वृथाभिमान मिथ्याभिमान है। तो देखो, जैसे अर्जुन के जीवन में जब वैराग हुआ, जिज्ञासा हुआ, तो उसी बुआ पुत्र को उसने भगवान नहीं बल्कि गुरु रूप से माना, ये गुरुदेव अपने को शिष्य माना। जब शिष्य भाव से भगवान के पास खड़ा हुआ तो भगवान ने आत्मज्ञान को उपदेश दिया, और वही आत्मज्ञान आज जो है ना जन जन में घर घर में प्रवाहित हो रही। देखो हमारे संस्कृति की ही महानता है कि महाभारत जैसे युद्ध, भाई युद्ध से तो नफरत की घृणा की नदियां बहती हैं। आज भी देखो नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिराया अमेरिका ने, लोग घृणा नफरत की भावना से देखते अमेरिका को, पर हमारे यहां महाभारत युद्ध होने पर भी एक ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। यही हमारे भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।